जब से दिलवाएगी तुमको जन्नत नमाज नमाज।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह
व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह
व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह
व अला
प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको अपने प्रोग्राम आए नमाज सीखे में खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी प्यारी बातें अपने दीन से मुतालिक, नमाज के बारे में, इबादतों के मसाइल के बारे में, इबादतों के, नमाज के फ़ज़ाइल के बारे में अपने इस प्रोग्राम में हम सीखा करते हैं। आज भी बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हमने सीख ली हैं। इससे पहले कि अपने मौजू पर बात करें, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो शख्स दिन भर में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, बरोज़ क़यामत मैं उससे मुसाफहा करूँगा, यानी हाथ मिलाऊँगा। सल्लु अला हबीब। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज भी हम नमाज से मुतालिक, नमाज के जो प्रैक्टिकल हमने कुछ प्रोग्राम पहले, कुछ एपिसोड पहले हमने आपको नमाज का आधा तरीका प्रैक्टिकल करके बताया था, आज इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे कि नमाज हमने पढ़नी किस तरह से है और नमाज में हमने क्या क्या अस्कार पढ़ने होते हैं, अत्ताहियात कैसे पढ़नी है, दुरूद इब्राहिमी कैसे पढ़ना है ना, दुआ कैसे पढ़नी है। तो इंशाल्लाह ये पूरा तरीका हम सीखने की कोशिश करेंगे। और नमाज के प्रैक्टिकल की तरफ जाने से पहले आइए आइए नमाज से मुतालिक एक कलाम सुनते हैं। जी गफरान भाई।
चलो नमाज पढ़े, चलो नमाज पढ़े, चलो नमाज पढ़े, चलो नमाज पढ़े, मैं क्या बताऊँ क्या है हकीकत नमाज की, मैं क्या बताऊँ क्या है हकीकत नमाज की, मैं क्या बताऊँ क्या है हकीकत नमाज की, हकीकत नमाज की, हकीकत नमाज की, अल्लाह की रजा है मोहब्बत नमाज की, अल्लाह की रजा है मोहब्बत नमाज की, चलो नमाज पढ़े, चलो नमाज पढ़े, चलो नमाज पढ़े।
सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों ये हमारा एक ना नारा हो जाना चाहिए, चलो नमाज पढ़े, है ना, जब अजान हो जाए, नमाज का टाइम हो जाए, चलो नमाज पढ़े। घर में है घर वालों को कह रहे हैं भाई चलो नमाज पढ़ें, बाहर हैं बाहर वालों को समझाना है चलो नमाज पढ़ें, ये हमारा एक नारा बन जाए, हमारा तकिया कलाम बन जाए, है ना। कुछ बच्चे अपनी बातें कर रहे होते हैं, दुनिया की बातें, मुख्तलिफ डायलॉग्स बोलते हैं, मुख्तलिफ जुमले बोलते हैं, उनके तकिया कलाम हो जाता है, वो गुफ्तगू करते हैं, उनकी पहचान बन जाती। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह का अंदाज था, वो दुरूद पाक बड़ी कसरत से पढ़ा करते थे, तो उनकी वो एक तरह से पहचान बन गया था, यानी वो अगर बात करनी होती थी ना, किसी ने उनका हवाला देना होता था, वो कहते थे वो नहीं दुरूद पाक पढ़ने वाले जो बुज़ुर्ग हैं, वो नहीं जो दुरूद वाले बुज़ुर्ग हैं, है ना। पिछले दिनों मदनी चैनल पर भी आपने देखा होगा एक प्रोग्राम चला था, एक खाका चला था ज़हनी आजमाइश के दौरान, तो वो एक बाबा थे जो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया करते थे, देखे आपने, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा किया करते थे, उनका नाम क्या था, बाबा शुक्रदीन, क्या नाम था, हाँ बाबा शुक्रदीन, एक पहचान बन गई ना भाई, अल्लाह अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा कर रहे हैं। एक तो हर मोमिन का ये भी अंदाज़ होना चाहिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, ठीक है। फिर दूसरा ये अंदाज़ होना चाहिए कि नमाज की दावत दें, यानी आपको देखकर आदमी को नमाज याद आ जाए, ये अंदाज़ होना चाहिए। बुज़ुर्गों के बारे में आता है ना कि औलियाउल्लाह वो होते हैं, अल्लाह के वली वो होते हैं, जब उनको देखा जाता है तो अल्लाह याद आ जाता है, उनको देखने से अल्लाह याद आ जाता है, क्योंकि वो अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हैं, अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हैं, अल्लाह के दीन पर अमल करते हैं, है ना, तो इसीलिए हमें भी चाहिए कि नमाज की अपनी ऐसी आदत बना लें। एक तो अपनी आदत प्यारे बच्चों होनी चाहिए कि नमाज में बिल्कुल भी कोताही ना हो, नमाज में बिल्कुल भी कमी ना हो, नमाज में बिल्कुल भी गफलत ना हो, और फिर अपने साथ दूसरों को भी नमाज की दावत देने की कोशिश करें कि जो हमारे साथ मौजूद है, दोस्त हैं, क्लास में हैं या आपके स्कूल में है, मदरसे में, सबको दावत दें, चलो नमाज पढ़ें, चलो नमाज पढ़ें। इस तरह से इंशाल्लाह नमाज की दावत देते रहेंगे। आपकी नमाज की दावत देने पर जो जो नमाज पढ़ेगा इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, नमाज दुरुस्त तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बार तशरीफ़ फरमा थे, एक शख्स आया नमाज पढ़कर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या फरमाया, फरमाया जाओ और जाकर नमाज पढ़ो कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो शख्स गया, दोबारा नमाज पढ़ने के बाद फिर आ गया, फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ जाकर नमाज पढ़ो कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। फिर तीसरी मरतबा नमाज पढ़ कर आया, फिर आका अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया कि जाओ जाकर नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। अब वो हैरान, उसने कहा या रसूलल्लाह आप मुझे सिखा दे मुझे नमाज कैसे पढ़नी है। परेशान हो गया कि उसे तो पता ही नहीं है नमाज कैसे पढ़नी है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने रुकू और सुजूद पूरे किया करो, उसको नमाज सही तरीके से पढ़ने की तालीम इरशाद फरमाई हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्योंकि प्यारे बच्चों नमाज में जो गलती की जाती है ना, बहुत बड़ा नुकसान। रिवायतों में आता है जो दुरुस्त तरीके से नमाज पढ़ता है, खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ता है, तो वो नमाज उसके लिए दुआ करती है, कहती है कि अल्लाह तेरी इस तरह हिफाजत फरमाए जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की। और जब इंसान नमाज को गफलत से पढ़ता है, रुकू और सुजूद पूरे नहीं करता उसके, ठीक है, खुशू खुजू के साथ नहीं पढ़ता, रुकू सुजूद पूरे नहीं करता, गफलत के साथ नमाज नाकिस पढ़ता है, वो नमाज बोसीदा कपड़े में लपेट कर उसके मुंह पर मार दी जाती है, तारीख हो जाती है, और वो नमाज उसके लिए कहती है कि तुझे भी अल्लाह ऐसे ही ज़ाया कर दे जैसे तूने मुझे ज़ाया कर दिया, है ना। तो प्यारे बच्चों ये अंदाज नहीं होना चाहिए, यानी जान छुड़ाने के लिए नमाज ना पढ़ें, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, उसका शुक्रगुजार बंदा बनने के लिए आप अपनी नमाज की अदायगी की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह अगर हम ज़ोक और शौक के साथ, बल्कि एक इनाम समझ कर पढ़ेंगे ना नमाज को, कि नमाज तो अल्लाह पाक का बहुत बड़ा इनाम है और मेरे लिए सआदत की बात है कि मेरे गुनाह बख्शे जा रहे हैं, मेरी नेकियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो अगर इंसान इस सोच के साथ, इंसान इस जज्बे के साथ नमाज पढ़ेगा तो फिर क्या होता है, पूरी रात गुजर जाती है लेकिन नमाज पढ़ते पढ़ते इंसान का दिल नहीं भरता। इंसान कहता है कि यार मैं नमाज पढ़ता रहूं, पढ़ता रहूं, उसको नमाज पढ़ने में मज़ा इतना आता है। तो प्यारे बच्चों हमें भी चाहिए कि नमाज की पाबंदी की कोशिश करें। अब इंशाल्लाह हम नमाज का प्रैक्टिकल आपको दिखा रहे हैं, और इस नमाज के प्रैक्टिकल में आप देखेंगे कि आपने क़याम किस तरह से करना है, रुकू सुजूद किस तरह से करना है, और उनमें पढ़ना क्या है। इंशाल्लाह हम आपको पढ़कर भी दिखाएँगे ताकि हमारी जो गलतियाँ और मिस्टेक्स हैं वो हम इसको दूर करने में कामयाब हो सकें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों आपने देखा था कि हमने नमाज का प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया था, तकरीबन सजदे तक पहुँच गए थे, अब उसकी तफसील आते हैं, लेकिन हम दोबारा से मुख्तसरन जो है आपको करके दिखा रहे हैं, मज़ीद आगे इसको हम कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। तो अब नमाज का प्रैक्टिकल करेंगे गफरान भाई, ठीक है, अब आप नीचे देखेंगे, मुझे नहीं देखेंगे क्योंकि नमाज के दौरान किसी के चेहरे को नहीं देखना चाहिए। तो अब आप जो है ज़मीन की सजदे की जगह पर देखेंगे और अल्लाह अकबर कहेंगे, ठीक है, और अल्लाह अकबर कहकर आपने नमाज को शुरू करना है, ठीक है। नमाज का प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, आपने नमाज किस तरह से पढ़नी है ये आप देख लीजिए, लेकिन गफरान भाई एक मिस्टेक हो रही है प्यारे बच्चों, आपने देखना है गफरान भाई को और आपने मिस्टेक पकड़नी है, क्या मिस्टेक है। अब कुछ गलती हो रही है, उस गलती की निशानदेही हम करेंगे आपके सामने ताकि बाद में हम वो गलती को ना दोहराएं। नंबर वन, सबसे पहले तो गफरान भाई आपने ये आस्तीन ऊपर क्यों की हुई है मुझे ये बताई। देखिए आपने ये जो आस्तीन ऊपर की हुई है ना, ऐसे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, ये जो है आस्तीन आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए, राइट, बल्कि आस्तीन को पूरा नीचे भी करें और बटन भी लगाएं। आपके आस्तीन में बटन है
जी,
ठीक है, इसको नीचे भी करें और बटन भी लगाएं। प्यारे बच्चों आपने आस्तीन ऊपर करके नमाज नहीं पढ़नी है, ठीक है?
हुजूर ये बताएं कि ना आस्तीन ही किसी की छोटी हो तो क्या करें?
भाई आपकी आस्तीन तो छोटी नहीं है ना,
नहीं।
आपको तो पूरा करके करना है, लेकिन अगर किसी बच्चे की आस्तीन छोटी है, राइट, यहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है, शर्ट में होता है ना, तो शर्ट में आस्तीनें छोटी होती है, देखा होगा आपने, तो वो जो टी शर्ट अगर आपने पहनी हुई है, शर्ट में तो चले बाजू का फुल आस्तीन भी होती है, आमतौर पर टी शर्ट जो होती है ना उसमें इतने बाजू तक, हाफ बाजू तक जो है ना वो आस्तीन होती है, तो अब चूंकि उन्होंने फोल्ड तो नहीं किया हुआ है ना, अब उनकी नमाज तो हो जाएगी, ठीक है। मसला जो है ना गुफरान ये फोल्ड करने का, ठीक है प्यारे बच्चों, आपकी अगर आस्तीनें आप फोल्ड नहीं कर सकते, अगर आपने शलवार या पैंट पहनी हुई है उसको भी फोल्ड नहीं कर सकते, फोल्ड करना मना है, तो सबसे पहले आप आस्तीनों को सही करें, ठीक है, आस्तीन को भी फोल्ड करें, बटन भी लगाइए, तो ये आस्तीन कभी भी प्यारे बच्चों कोशिश करें कि आस्तीन आपकी फोल्ड नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से गिरेबान के बटन, जिसे गुफरान ने गिरेबान के बटन बंद किए हुए हैं, और आपने शलवार को या पैंट को फोल्ड भी नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब देखें दूसरी एक मिस्टेक और हो रही है, गुफरान क्या कर रहे हैं यार आप, दूसरों को सिखाने के लिए जा रहे हैं, खुद गलतियां करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपके पाँव को देखें, ये तो आपने बिल्कुल मिला कर रखे हुए पाँव। हमने ये तरीका बताया था कि भाई कम से कम कितना फासला होना चाहिए दो पाँव के दरमियान, चार उंगलियों के बराबर, कितना फासला होना चाहिए, चार उंगलियों का, और ज्यादा से ज्यादा एक फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच, नहीं एक फुट में तो ज्यादा हो जाएगा भाई आलियान, एक फिट भी ज्यादा हो जाएगा,
एक कोनी तक
बता रहे, एक हाथ तक, थोड़ी तक, कोनी तक, यहाँ तक, एक हाथ जितना फासला, इतना भी नहीं,
अंगूठे से लेकर छोटी उंगली तक,
अंगूठे से लेकर
छोटी उंगली
ऐसे, हाँ इसको कहते हैं बालिश्त, क्या कहते हैं, बालिश्त, एक बालिश्त, एक हाथ भी नहीं, एक फुट भी नहीं, एक बालिश्त, ज्यादा से ज्यादा एक बालिश्त हो, और कम से कम कितनी उंगलियों का फासला होना चाहिए, चार उंगली का फासला होना चाहिए, तो जो आपने मिला के रखे हुए ना इसको थोड़ा सा और खोलें, ये अधिक, प्यारे बच्चों ये जो फासला है ना ये एक स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है, ये जो अंदाज है ना ये बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा अगर ज्यादा भी हो जाता है एक बालिश्त को हरज नहीं, आपको इजाजत है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, इसको जरा नापें, आराम से झुकें, इसको जरा नापे कितना है, उंगलियां रखें ऐसे बीच में, ये देखें तकरीबन 5-6 उंगलियों का फासला है इनका गुफरान के दोनों पाँव के दरमियान, ठीक है गुफरान, तो इतना फासला रखना है, आस्तीन नीचे कर लें, ये अंदाज होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें प्यारे बच्चों नमाज स्टार्ट करने से पहले ही हमें जो है वो पेशे नज़र रखना ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि नमाज शुरू करने से पहले ही हम जो है वो नमाज की शराइत को फोत कर रहे हैं, नमाज की शराइत पूरी नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये जो तरीका है ना, एक बात और सुन लो, नंबर एक तो ये हनफी तरीका है नमाज पढ़ने का, और दूसरा ये है कि ये मर्दों का तरीका, लेडीज का, इस्लामी बहनों का, बच्चियों का जो नमाज पढ़ने का तरीका है वो जुदा है, उसके लिए आप किताब देख सकते हैं इस्लामी बहनों की नमाज, आप टाइटल पर भी देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस्लामी बहनों की नमाज ये बुक है, आप इस बुक में इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका देख सकते हैं। इसके अलावा अमीर अल सुन्नत ने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका पूरा प्रैक्टिकल एक छोटी सी बच्ची के ज़रिए से करवा कर दिखाया है, तो उसको भी आप जो है यूट्यूब पर देख सकते हैं अमीर अल सुन्नत किस तरह से तरीके सिखा रहे हैं उस बच्ची के ज़रिए से कि ख़वातीन ने, इस्लामी बहनों ने, बच्चियों ने कैसे नमाज अदा करनी है। तो ये जो तरीका है ये मर्दों का है, ये जो तरीका है ये बच्चों का है, और बच्चियों का तरीका मुख्तलिफ है, तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखना ज़रूरी है। अब ये तकबीर कहेंगे क्योंकि हम सिखा चुके थे पहले, लिहाजा हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, अब ये नमाज पढ़ते चले जाएंगे और आपने इनकी नमाज के तरीके को फॉलो करना है। जी गुफरान भाई देखें, आपने तकबीर कहने के बाद तो सना, सूरह फातिहा, सूरत सब आपने बुलंद आवाज़ से पढ़ना है, ठीक है, फिर रुकू में जाना है, रुकू में भी बुलंद आवाज़ से तकबीरत कहनी है, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलक अलहम्द, फिर सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीहात पढ़नी, और जब आप सजदे में जाएंगे तो उसकी डिटेल, उसकी तफसील इंशाल्लाह ताला हम अपने बच्चों को दिखाएंगे।
अल्लाहु अकबर, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. اللہ اکبر.
اب دیکھیں، واپس کھڑے ہو ذرا، دیکھیں اب آپ نے سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے کیا رکھنا ہے، گھٹنے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ پیارے بچوں یہ ذہن میں رکھنا ہے، سب سے پہلے سجدے میں جاتے ہوئے کیا رکھیں گے؟
گھٹنے.
اس کے بعد ہاتھ، اس کے بعد، اس کے بعد پیشانی، اور جب آپ سجدے سے اٹھیں گے تو پہلے کیا اٹھائیں گے؟ پیشانی، پھر پھر پھر
گھٹنے.
یہ ترتیب بالکل الٹ ہوگی، یعنی سجدے میں جاتے ہوئے جو ترتیب ہے، سجدے سے اٹھتے ہوئے اس سے بالکل الٹ ترتیب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ناک تھوڑا سا زور سے لگائیں کہ اس کی ہڈی زمین پر لگ جائے، پیشانی تھوڑی سی زور سے جمائیں کہ زمین کی سختی محسوس ہو جائے، اور سجدے میں دونوں پاؤں کی دسوں انگلیاں مڑ کر قبلے کی جانب ہونی چاہیے. اس بات کا دھیان رکھیں، آپ کے جو دونوں یہ نا، یہ جدا ہونے چاہیے آپ کے پیٹ سے، ٹھیک ہے؟ یہ جدا ہونے چاہیے، ملے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح اس زمین پر لگے ہوئے نہ رکھیں، اس بات کا بھی دھیان رکھیں گے. اسی طرح سے سجدہ کریں گے، اور سجدے کی تسبیح بھی آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. جی،
سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر.
ٹھیک ہے، اب اس میں بالکل سیدھے ایسے رکھیں ہاتھ، آپ کی نظر آپ کی جھولی پر ہوگی ابھی، ٹھیک ہے؟ اور کچھ بچے دیکھیں ایسے کرتے ہیں، ہاتھ یوں رکھ لیتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے، یوں کر لیتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط، یہ طریقہ درست. اور آپ کی انگلیاں ایسے سیدھی ہیں، ایسے کریں، یہ انداز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھے ہیں، اس کو کہتے ہیں جلسہ. بالکل سیدھا بیٹھیں گے، کچھ بچے تھوڑا سا سر اٹھا کر ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ انداز بھی درست نہیں ہے. جی غفران بھائی، یہ ایک سجدہ ہو چکا ہے، اب دوسرا سجدہ کریں گے.
اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی.
اب دیکھیں پیارے بچوں، یہ ان کے جو ہاتھ ہیں، یہ جو ہاتھ ہیں ان کی کوہنی ہے، یہ ان کے دیکھیں کمر سے جدا ہے، تو اس کا بھی دھیان رکھنا ہے. کچھ اس کو ملا دیتے ہیں، یہ ملا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی دیکھیں زمین سے اٹھا ہوا ہے، تو اس کا زمین سے بھی اٹھا ہوا ہونا ضروری ہے. جی،
اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل يا أيها الكافرون.
بھائی ابھی آپ نے پہلی رکعت میں کیا پڑھی تھی؟
سورہ اخلاص.
سورہ اخلاص پڑھی تھی، اور دوسری میں کیا پڑھ رہے ہیں؟
سورہ کافرون.
سورہ کافرون. یہ تو غلط ہو جائے گا نا پیارے بچوں، یہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. کیوں غلط ہو جائے گا، کون بتائے گا؟ جی علیان، کیا بتائیں گے؟
قرآن پاک کو یہ نماز میں ترتیب سے پڑھنا چاہیے.
قرآن پاک کو
نماز میں ترتیب سے پڑھنا،
نماز میں ترتیب سے پڑھنا چاہیے. یعنی آپ نے جب سورہ اخلاص پڑھ لی ہے، तो अब सूरह काफिरून नहीं पढ़ोगे, बल्कि अब आपने क्या पढ़नी है?
सूरह फलक।
क्यों नहीं पढ़ सकते पता है? ये मसला नहीं पता होगा प्यारे बच्चों। देखें, आप सूरह इखलास पढ़ने के बाद सूरह काफिरून नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उल्टा कुरान नहीं पढ़ना है, बल्कि आपने सीधा कुरान पढ़ना है। यानी आप जो सूरत पढ़ चुके हैं तो उससे पहले वाली कोई सूरत नहीं पढ़नी है, यानी उससे पीछे वाली कोई सूरत नहीं पढ़नी है, बल्कि उससे आगे वाली सूरत पढ़नी है। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। तो आप कौन सी पढ़ेंगे?
सूरह
फलक। जी पढ़ें, कंटिन्यू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औजु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब व मिन शर्रि नफ्फाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इदा हसद। الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
میرا نام سید شاہین رضا ہے
جی جی شاہین بھائی کیا آپ بولنا چاہ رہے ہیں
میرا سوال یہ ہے کہ نماز آنکھیں بند کر کے پڑھ سکتے ہیں
آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا ویسے منع ہے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا منع ہے ٹھیک ہے بلا وجہ اگر آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لیں تو مکروہ ہے ٹھیک ہے آنکھیں کھول کر نماز پڑھنی چاہیے لیکن اگر کسی کو مزہ آ رہا ہے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے میں بہت خوشو آتا ہے مزہ آتا ہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اگر ویسے ہی بلا وجہ پڑھ لیں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لیں تو یہ مکروہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو پیارے پیارے بچوں آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اور اس میں ہم نے آپ کو نماز کا پریکٹیکل بھی دکھایا نماز سے متعلق ایک دو سوالات بھی ہم نے پروگرام میں شامل کیے اللہ پاک ہمیں درست طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سے دلوائے گی تم کو جنت نماز